بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد اپنے مقصد کربلا کو بھی بیان کیا اور ہماری ذمہ داریوں کو بھی بیان کر دیا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے بعد از کربلا. مقصد کربلا جو امام حسین نے بیان کیا کہ سماج اتنا پست ہو گیا ہے کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے ہیں، دھڑلے سے لوگ باطل کی پرستاری کر رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا بھی نہیں ہے. سماج چونکہ اتنا بگڑ گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، میں اس سماج کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، چاہے اسے اپنی زندگی ہی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے. عرض کیا تھا کہ جب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس بیماری کا علاج ہماری ذمہ داری ہے، تو علاج سے پہلے بیماری کی وجہ کو سمجھنا ہے، اس کی جڑ کو سمجھنا ہے، تاکہ علاج صحیح سمت میں انجام، صحیح ڈائریکشن میں علاج انجام پائے اور اس کا نتیجہ نکل سکے. تو سب سے پہلے چیز ہمیں یہ جاننا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے. حق تو کوئی ایسی چیز نہیں تھے لوگ بھاگیں. حق کو اللہ نے محبوب دل بنایا ہے، محبوب عقل بنایا ہے، پھر کیوں لوگ حق سے بھاگتے ہیں، کیوں باطل کی طرف کھینچے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک خواہش نفس ہے. عقل کو محبوب ہے، نفس کو محبوب نہیں ہے. نفس کے لیے تلخ ہے، عقل کے لیے شیریں ہے، میٹھا ہے حق. لیکن نفس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، مگر ضرورت ہے اسے کنٹرول کرنے کی بھی. بچے کو غذا چاہیے، اس کے سامنے آپ کھانا رکھ نہیں، کھاؤ جتنا کھانا ہے، نہیں، ماں کنٹرول کرتی ہے نا. کھانا تو ہے مگر کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اس کے اوپر ایک ماں کی نگاہیں ہوتی ہیں، پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ لا کے رکھ دیا، جاؤ جو کچھ دل چاہے تمہارا کھا لو، کون سا کھانا مفید ہے کون سا. اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل کو رکھا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے. دو اللہ نے گارڈ دیے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے، ایک عقل، ایک انبیاء اور ائمہ. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ للہ علی الناس سے حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. اللہ نے لوگوں کو دو ہادی دیا ہے، दो रहनुमा दिया है, दो गार्ड दिए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, एक हमारे वजूद के अंदर है और एक हमारे वजूद से बाहर है। अम्मल बातिना तो फल अक्ल, जो गार्ड अंदर है हमारे उसका नाम क्या है? अक्ल है। और अम्मा ज़ाहिरा तो फर रसूलो वल अंबिया ओ वल अइम्मा, और जो बाहर हैं उनका नाम क्या है? रसूल हैं, नबी हैं, अइम्मा इमाम अलैहिमुस्सलाम हैं। तो हुनर क्या है? हुनर है नफ्स को कंट्रोल कर लेना। बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वो नहीं जिसने ढेर सारा पढ़ लिया है, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास ढेर सारी दौलत है, बड़ा आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया है, वो है बड़ा आदमी। जी चाह रहा है खाना खाने को, नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा माल नहीं है, ये किसी और का खाना रखा हुआ है, हम बगैर परमिशन के कैसे खा सकते हैं अगरचे वो यहां मौजूद नहीं है। जी चाह रहा है फला नामहरम चेहरे को देखने के लिए, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, कंट्रोल कर लेंगे अपने ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। आदमी वही बड़ा है जिसके अंदर ये ताकत पैदा हो जाए। हम इस कमजोर का माल छीन सकते हैं मगर नहीं छीनेंगे, हम फला के ऊपर जुल्म कर सकते हैं मगर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हम हुक्म खुदा है, हमने नफ्स को कंट्रोल कर लिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अस्हाब इकट्ठा हैं, एक बड़ा सा पत्थर उठा रहे हैं, इतने में पैगंबर आ गए, क्या हो रहा है भाई? क्योंकि एक मुसलमान के लिए ये जायज नहीं जो काम चाहे करे, मुसलमान को वो काम करना है जिसमें अक्ल की निगाह में कोई फायदा हो, वो फायदा या हमें दुनिया में काम आ सके या हमें उकबा में काम आ सके। जबान को चलाओ, यकीनन चलाओ, लेकिन बोलने से पहले सोचो इस बोलने का कोई फायदा है। पढ़ो, यकीनन पढ़ो, पढ़ने से पहले ये देखो कि इसका कोई फायदा है, देखो, जरूर देखो, देखने से पहले ये सोचो इसका कोई फायदा है, या दुनिया में फायदा हो या आखिरत में फायदा हो, ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, इस पढ़ने का क्या हासिल? हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी लगाई, क्या फायदा है इसका? दुनिया या आखिरत में कहीं होगा इसका फायदा? फला टीम जीती या हारी, पूरी रात रात भर जाग रहे हैं, कौन जीता कौन हारा, क्या फायदा है इसका आपको? वो काम करें जिसका कोई क्या है आपको फायदा है, जिस चीज का हमें फायदा। पैगंबर ने देखा पत्थर उठा, क्यों पत्थर उठा रहे हो भाई, तुम्हें और कोई काम नहीं है, क्यों पत्थर उठा रहे हो? सवाल करना, उठा रहे हैं ठीक है, नहीं, एक मुसलमान के हर अमल पर कंट्रोल होना चाहिए। कह या रसूलुल्लाह, हम ये तय करना चाहते हैं कि हमें पहलवान कौन है, कौन ज्यादा ताकतवर, अशजाउन्नास कौन है? पैगंबर ने कहा अशजाउन्नास समझने के लिए पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। अशजाउन्नास मन गलबा हवा, अशजाउन्नास वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा जाए, वो है अशजाउन्नास। अशजाउन्नास वो है, पुलिस खड़ी है इसलिए जुर्म नहीं करेंगे, ये कौन सा कमाल हुआ, ये कौन सा कमाल हुआ? फला आदमी बड़ा ताकतवर है भाई, इसके इसको टोपी, बड़ा चालाक है, इसको टोपी नहीं पहना सकते, ये कौन सा कमाल हुआ? एक बुद्धू आपकी दुकान पे आ गया है, एक बुद्धू आपसे बिजनेस कर रहा है, बेचारे कुछ पता नहीं है, उसको टोपी ना पहनाया तो ये कमाल है, उसको अगर धोखा न दिया, दिल क्या चाह रहा है? दिल चला आज अच्छा फंसा है, आज काट लो इसे जितना काटना है भाई, पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है, नफ्स तो यही चाह रहा है ना, लेकिन नहीं, खुदा ने धोखा देना हराम करार दिया है, ये नहीं जानता हम, इसको हीरे और शीशे की तमीज नहीं है। अगर हम इसके आगे शीशे की अंगूठी भी इसको बेच देंगे ना, जिसको पता नहीं चलेगा माल बहुत इसके पास है, ले लो माल, नहीं, उसको हम बताएंगे भाई साहब ये हीरा नहीं है जिसको आप हीरा समझे, शीशा है, इसकी डॉलर, इसकी कीमत $1 है, $1 मिलियन नहीं जो आप दिए जा रहे हैं, ये $1 हमें दे दिए, बकिया अपने पास रखिए। ये है बड़ा पहलवान अशजाउन्नास, इसे कहते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। एक और हदीस है कि अकरबुल इबादे इलल्लाह। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं ना कुर्बतन। अब जबान से तो कहते, दिल में है कि नहीं नहीं मालूम, जबान है तो कही देते हैं कुर्बतन इलल्लाह। पता है नमाज आदत है इसलिए पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं, या ये जो है वो योग करने के लिए पढ़ते हैं कि ये आसन जो है इससे फला फायदा होता है, कमर की दर्द ठीक हो जाती है, घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, है ना। बहुत से लोग वो योग के आसन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो नमाज मगर जबान से क्या कहते हैं हम? कौर बतान अल्लाह। हज गए काहे के लिए? कौर बतान अल्लाह। जबान से तो है, अब अमल बताने काहे के लिए गए हैं? स्मगलिंग करने के लिए गए हैं, या मार्केट में क्रेडिट जो है बनाने के लिए गए हैं? अगर यह तो हाजी साहब हैं तो हाजी साहब पे इतना तो भरोसा है कि हाजी साहब जो है धोखा नहीं देंगे। हाजी साहब अगरचे अब कौम भी चालाक हो गई है, उसको भी पता चल गया है कि हज और हज में फर्क होता है, लिहाजा उसने हाजी के वजन पर एक काफिया और निकाल लिया है। कहते हैं ना हाजी पाजी, उन्हें पता चल गया है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम सब तो कुर्बतन अल्लाह ही कहते हैं ना। तो हम सब की ख्वाहिश क्या है? अल्लाह का तकर्रुब। नमाज अल्लाह के कुर्बत के लिए, रोजा अल्लाह के कुर्बत के लिए, अज़ादारी अल्लाह के कुर्बत के लिए, मातम अल्लाह के कुर्बत के लिए, आंसू अल्लाह से कुर्बत के लिए, तबर्रुक बिरयानी ये सब काहे के लिए? अल्लाह से, यही है ना, सब अल्लाह से कुर्बत। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब कौन है सुनना चाहते हो? वो अमल जो बड़ी तेजी से अल्लाह से आपको करीब कर देगा। फरमाते अकरबुल इबादे इलल्लाह अक्वलुहुम लिलहक व इन काना अलै व अअमलुहुम बिलहक व इन कानत फीहे कुरहा। सबसे ज्यादा करीब अल्लाह से वो शख्स है जो सबसे ज्यादा हक बोले, चाहे वो हक उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। बहुत दफा हक खिलाफ हो जाता है ना, इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, अब इलेक्शन चाहे जमात का हो, इलेक्शन चाहे ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, या असेंबली का हो, या पार्लियामेंट का हो, इलेक्शन तो इलेक्शन ही है ना। दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तीन खड़े हुए हैं, चार खड़े हुए हैं, हमें मालूम है कि हम भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, हमें पता है कि इकबाल साहब एडमिनिस्ट्रेशन में हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, कोई और जाने नहीं, हम तो जानते हैं ना। हमें पता है कि ये हमसे ज़्यादा दयानतदार हैं, हमें पता है कि ये हमसे ज़्यादा मुखलिस हैं, हमें सब पता है। अब जाहिर सी बात है, उस ओहदे के लिए, सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, किसी भी ओहदे के लिए किसको चुनना चाहिए? जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, जिसके पास तकवा ज्यादा हो, जिसके पास छल कपट कम हो, जिसके पास एनर्जी हो। भाई बहुत लोग अच्छे हैं, तकवा है, एनर्जी नहीं है। आदमी तो बहुत अच्छे हैं मगर अब इनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ये बन तो जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते हैं, है ना। तो किसको बनना? जिसके पास तकवा है, जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास सूझबूझ है, जिसके पास अक्ल है, वो सारी चीजें इनके पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन पब्लिक में मकबूलियत हमारी है, पॉपुलर हम हैं, पॉपुलरिटी हमारे पास है, लोग हम ही को जानते हैं। पैगंबर फरमाते हैं सबसे ज्यादा करीब अल्लाह से कौन है? वो है जो सबसे ज्यादा हक बात कहे। अब जब हम चुनावी तकरीर के लिए खड़े हुए तो क्या कहेंगे? अगर हमने कहा भाई जो हमें वोट दो, हम तुम्हें यह बना देंगे, हम वो कर देंगे, हम जानते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, ये ज्यादा कर देंगे। सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब वो है जो आके कहे भाइयों आप समझते हैं कि मैं लायक हूं, नहीं मुझसे ज्यादा ये लायक है, अब आपकी मर्जी, चाहे लायक को वोट दे चाहे नालायक को वोट दे दे, चाहे लायक को वोट दे दे चाहे, मैं आपको हक बता देता हूं। अकवलो होम लिल हक, सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब वो है जो सबसे ज्यादा सच बातें करे, हक की बातें करे। व इन काना अलै, चाहे वो हक उसके खिलाफ ही क्यों ना चला जाए। अगर हक हमारे फायदे में है, हमने हक कहा, तो कौन सा कमाल है? हक अगर हमारे फायदे में है और हमने हक कहा, तो कौन सा कमाल है? कमाल तो वहां है जहां हक हमारे खिलाफ जा रहा है मगर हम फिर भी हक कहते, कहे नहीं काफी नहीं, अमलुहुम बिल हक, और अमल भी हक पे करे, व इनकान फी है कुरहा, अगरचे वो अमल उसको गवारा ना हो। वो अमल तो जबान से भी हक, और बहुत से लोग जबान से तो हक बोल देते हैं मगर अमल की बारी जहां आ जाती है उनसे कहिए हक के बारे में तकरीर कीजिए, शानदार एक घंटा बेहतरीन टॉप की तकरीर, लेकिन अमल की जब बारी आई तो मैदान से बाहर। हमारे यहां देखिए अमल को बहुत अहमियत हासिल है। फला साहब बहुत बड़े आलिम हैं, क्या मतलब, इन्होंने बहुत पढ़ा है नजफ में, कुम में, यहाँ 10 साल 20 साल 25 साल पढ़ा है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं ये बड़ा आलिम नहीं है, छोटा आलिम बड़ा आलिम कैसे तय करेंगे, बड़ा आलिम कौन है? पैगंबर फरमाते आलिम वो है कि जो पढ़ा है उस पर अमल भी करे। वइन काना कलील अलअमल, चाहे कलील अलइल्म, चाहे उसका इल्म कभी क्यों ना हो। एक वो है जिस जो हौज़े इल्मी कुम में उसने 5 साल पढ़ा है, दूसरे ने 20 साल पढ़ा है। 20 साल वाला किसी चीज पे अमल नहीं करता, 5 साल वाला अमल करता है। ये आलिम है वो आलिम नहीं है। तो अमल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। तो नफ्स पर काबू, क्योंकि नफ्स पर अगर काबू नहीं है तो इंसान हक को नहीं पहचान सकता। तो हम खुद अपने लिए कोशिश ये करें कि अपने नफ्स को कंट्रोल करें, और जो हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं उनसे भी, उनको भी दावत इस बात की दें, बताइए काम एक दिन का नहीं होता है, मुसलसल पत्थर है ना, पत्थर पर एक एक कतरा अगर पानी गिरता जाए, गिरते 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 एक दिन उसमें सुराख हो जाए, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन पत्थर में पानी सुराख कर सकता है। ये ना कहें कि नसीहत असर नहीं करती है, नसीहत करें क्यों, किसी से कहें क्यों, आपने क्या समझ रहा है एक दिन में हो जाएगा। नसीहत यानी पानी का कतरा, और गुनाह आलू दिल यानी पत्थर, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। कुरान कहता कल हजार और अशद कसवतन, इनके दिल पत्थर हैं बल्कि पत्थर से भी ज्यादा संग दिल। करबला में इमाम हुसैन जब नसीहतें करते थे बाघों पे असर, हुर पे असर हुआ, हुर ही नहीं, आशूर की सुबह और शब आशूर टोटल मिलाकर के 30 अफराद लश्कर उबरे साथ से हुसैन से आके मिले हैं। एक का नाम हुरी का नाम आता है लेकिन तनहा एक हुर नहीं है, 30 अफराद हैं जो वहां से निकल के यहां पर आए हैं। तो असर हुआ ना, 2 मुहर्रम को सुना, 3 मुहर्रम को सुना, 4 मुहर्रम को सुना, 5 मुहर्रम को सुना, सुनते 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 हाँ किसी पर असर हुए भी नहीं बहुत से लोगों पर। बहरहाल तो हम खुद भी कोशिश ये करें अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत वहशी जानवर है, इसको बड़ी मजबूत रस्सी से बांधना पड़ेगा, ये छोटी मोटी रस्सी से काम नहीं चलने वाला है, तोड़ा लेगा फिर इसे, इसे आहानी जंजीरों से पाबंद करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि समाज में हक पर अमल हो। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, जिम्मेदारी क्या है, कि लोग हक पर अमल करें, बातिल पर अमल करने से लोगों को रोकें। तो पहली ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या होगी, हम लोगों को इस बात की तरफ ले जाएं कि लोग नफ्स परस्ती, हवा परस्ती, ख्वाहिश परस्ती से बाहर आ जाएं। और ये अमल एक दिन का नहीं है। अपने बच्चों की भी अगर हम तरबियत करना चाहते हैं, अपने बच्चों की भी अगर परवरिश करना चाहते हैं, तो परवरिश में हमें इस नुक्ते की तरफ ध्यान देना है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जिसके बिना पर हक को लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि अर्ज किया हक को पहचाना नहीं कि माना, पहचानते ही हक को मान लेंगे। पहली वजह है कि हक को पहचान, हक जैसा है वैसे ही पहचाने। मतलब बात चीज लोग देख तो रहे थे कि अली हैं, लेकिन अंधे थे, देख नहीं रहे थे, देख रहे थे इमाम हुसैन है मगर ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये वो हुसैन है जो हमारी नजात का जरिया है। अबू जहल पैगंबर को देख तो रहा था मगर क्या देख रहा था, यतीम अब्दुल्ला समझ रहा था, रसूलुल्लाह नहीं समझ रहा था। हकीकते पैगंबर फकत यतीम अब्दुल्ला तो नहीं ना है, क्योंकि यतीमों को जमाने में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था, कीमती निगाहों से, वो भी पैगंबर किस निगाह से देख रहा था। लेकिन अगर पैगंबर को रसूलुल्लाह समझ लेता, हक को समझ लेता। दूसरी चीज जिसकी बिना पर लोग हक से आशना नहीं हो पाते हैं वो क्या है, वो ये है कि हक को बातिल का लिबास पहना दिया जाता है। एक होता हक पर पर्दा डाल देना, छुपा देना, और एक उससे बढ़कर के हक को बातिल बना देना। हक को छुपा दिया, हक नजर नहीं आ रहा है। नहीं, नजर सामने तो है, पहचानते हैं कि ये अली हैं, ये हुसैन हैं, ये हसन हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जो है प्रोपेगेंडों के जरिए से उनको बातिल बना करके पेश कर दिया गया है। आज भी देखते हैं ना, प्रोपेगेंडों के जरिए से मुजाहिद को टेररिस्ट, टेररिस्ट को मुजाहिद। अच्छा, कभी कभी एक ही आदमी को, कभी मुजाहिद कभी टेररिस्ट, एक ही ग्रुप को, कभी मुजाहिद कभी टेररिस्ट, अफगानिस्तान में टेररिस्ट, सीरिया में है, वही एक ही है, वही अलकायदा है ना। अफगानिस्तान में क्या है? टेररिस्ट। सीरिया में मुजाहिद। हर तरह की मदद उनको दी जा रही है। मीडिया का कमाल है ना ये तो। तो क्या किया उन्होंने? हक को बातिल और बातिल को हक बना के पेश कर देते हैं। हक को बातिल का लिबास जब पहना देंगे तो हमारे सामने हक नहीं आया, हम तो इसे बातिल समझ रहे हैं, और फितरत बातिल के खिलाफ है, अक्ल बातिल के खिलाफ है, लिहाजा लोग उसे नहीं मानते हैं। जो बातिल है उसे अपना लेते हैं, जो हक है उसे नहीं अपनाते। कुरान मजीद ने इसको बहुत बड़े गुनाहों में शामिल किया है। दो जगह पे कुरान में है, एक सूरह बकरा में, एक सूरह आले इमरान में। सूरह बकरा में आम लोगों को हुक्म दिया कि ऐसा न करो, और सूरह आले इमरान में अहले किताब के बारे में उनकी हरकत को बयान किया, वो ये काम करते हैं। कुरान मजीद सूरह बकरा, ला तलबसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। देखो, कभी ये जुर्म मत करना कि हक को बातिल बना के पेश मत करो, ना हक को छुपाना ये जानते हुए कि ये हक है, और ना हक को बातिल का लिबास पहना देना। और आले इमरान में अहले किताब से खिताब करते, या अहले किताब लिमा तलबिसून अल हक बिल बातिल व तक्तुमून अल हक व अंतुम तालमून। ए अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल का लिबास पहना करके पेश कर रहे हो? क्यों हक पर पर्दा डाल रहे हो, हालांकि तुम पहचानते हो कि हक क्या है? हमेशा शैतानी टोला जो नहीं चाहता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते पर चलें, उनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि हमेशा हक को बातिल का लिबास पहना करके पेश किया जाए। आप देखें बनी उमैया ने क्या किया, अमीरुल मोमिनीन को शाम में किस तरह से पहचानवाया, अली को कैसा पहचानवाया था? ऐसा पहचानवाया कि जब मस्जिद कूफा में अली के शहीद होने की खबर शाम पहुंची है तो शाम वाले ताज्जुब से एक दूसरे से पूछ रहे थे, अली मस्जिद में क्या कर रहे थे? जिसकी काबे में विलादत, मस्जिद में जो जान नमाज है, जो रूह नमाज है, जो शर्त कबूलिय नमाज है, ऐसा प्रोपेगंडा कि लोग पूछ रहे हैं कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे, क्या करने मस्जिद में गए थे? इतना प्रोपेगंडा शदीद है इमाम हसन के खिलाफ कि जब शाम से एक शख्स मदीने आता है, उसे पता चलता कि यही हसन है, कितना बुग्ज भरे हुए था दिल में, देखते ही इमाम हसन को गालियां देना शुरू कर देता है, नादेबा अल्फाज अदा करता है। इमाम हसन पै करे हिल्म बुर्दबारी, खामोशी सब कुछ सुन रहे हैं। जब कह चुका, पूछा, भाई तो मदीने का नहीं लगता है, तो कहीं परदेसी, परदेश से आया, परदेसी है, खाना खाया कि नहीं खाया, ठहरने की कोई जगह है कि नहीं है, वापसी का इंतजाम है कि नहीं है? तो परेशान हो गया, हमने तो शाम में कुछ, हम तो अभी इंतजार कर रहे थे, अभी हम पर हमला करेंगे, अभी हमें गालियां देंगे, अभी हमें चीर फाड़ खाएंगे, क्योंकि मदीना है ना, इमाम के तरफदार हैं हम, इशारा कर देते, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसको तो इस बात की उम्मीद थी। ये हुस्न अखलाक, ये तो पैगंबरों वाला अखलाक है। इमाम के कदमों पर गिर पड़ा कि मौला अल्लाह यजअल हैसो, अल्लाह अअलमो हैसो यजअल रिसालता, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को किस जगह पर रखे, उसका ठिकाना कहां होना चाहिए। मौला, आज तक आप मेरी निगाह में सबसे ज्यादा नफरत वाली चीज थे, आज मेरी निगाह में आपसे ज्यादा महबूब कोई नहीं है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये जो है प्रोपेगंडा, इमाम हुसैन के बारे में क्या, ये खारिजी हैं इस्लाम से। कि कल मैंने रवायत पढ़ी थी ना, बाजार शाम में इमाम सज्जाद से जब उस बूढ़ी की मुलाकात हुई है, कल पढ़ा था ना मैंने। तो इस हद तक हालात जो माविया ने वहां के ऊपर बना रखे थे, पूरा जोर लगा दिया गया था कि हक को बातिल का लिबास पहना दिया जाए, लोग हक से आचना ना हो सकें, लोग हक को पहचान ना सकें। और उसके लिए माविया ने बड़ी कोशिशें की, खजाने का मुंह खोल दिया गया था, हदीसें गढ़ी जा रही थी, जाली हदीसों के कारखाने इसी में इक्तफा नहीं किया। आप देखें कि स्कूल बहुत अहम है ना, स्कूलों के जरिए से हक भी फैलाया जाता है और बातिल भी फैलाया जाता है। किस तरह से हक को बातिल का लिबास पहनाए, माविया ने स्कूल खोला था बच्चों के लिए, फ्री लंच स्कूल, जहां पर लंच मिलता था मुफ्त में दोपहर में बच्चों को, बच्चों को पढ़ाया क्या जाता था अली के खिलाफ, सबक क्या था उनका, अलिफ बे क्या था, अली के खिलाफ बातों को पढ़ना, या अली ऐसे है, अली वैसे, अली वैसे। उसके बाद दोपहर का वक्त आ गया, बच्चों को भूख लगी है, खाना चाहिए, चलो दस्तरखान लगा, बच्चे टूटे, रुक जाओ, पहले अली पे लानत भेजो तब खाना मिलेगा। भूखे बच्चे हैं, अली कौन है, पहले समझा चुके हैं अली कौन है। बच्चों टूट गए, खाना खाना शुरू किया, खाने के बाद छुट्टी जब होने लगी तो हर बच्चे को एक एक खिलौना, हर बच्चे को एक एक खिलौना। आप जानते हैं ना कि बच्चों को खिलौनों से कितनी मोहब्बत होती है, जो खिलौना दे उनकी निगाह में उससे कितनी मोहब्बत होती है, जो खिलौना दे वो महबूब, और जो खिलौना तोड़ दे उसे नफरत। यही है ना भाई, आपके घर में दो लोग आते, दो अंकल आते हैं, एक अंकल खाली हाथ चले आते हैं, दूसरे अंकल हमेशा खिलौना लेकर के आते हैं, बच्चे का क्या होता है रिएक्शन, खाली वाले को देखा जाके कहाँ वो अंकल आए हैं, यानी आप जाइए हमारी जरूरत वहां नहीं है, नहीं खिलौना लेके जो आए, अरे वो टूट, अभी तो पापा को खबर भी नहीं दिया, वो 19,000 क्यों खिलौना लेकर के आए हैं। माविया ने उनको खिलौना, अंकल माविया की तरफ से है, अंकल माविया की तरफ से खिलौना है, सब बच्चे खुश। अच्छा उस जमाने में जापानी खिलौने तो नहीं थे ना, जानवरों के बच्चे होते थे, बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, ये सब खिलौने में बच्चे लेकर के आ गए। अच्छा जानवर के बच्चों से बच्चों को रगबत बहुत होती है, वो अपने साथ रखे हैं, खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, रात में सोते वक्त भी अपने बिस्तर पर सुला लिया, इधर खिलौना दिया गया। रात हुई, माविया ने अली के सिपाहियों का लिबास पहना करके अपने फौजियों को भेजा, उनके घरों पे जाओ और जो बकरी के बच्चे दिए उनको ज़बह कर दो। किसने ज़बह किया, क्यों ज़बह कर रहे हो, अली का हुक्म है। माविया कौन, खिलौना देने वाला, अली कौन, खिलौना तोड़ने वाला। सुबह जब बच्चे उठे और देखा कि उनका खिलौना टूटा पड़ा है, बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया गया, खून चारों तरफ है, किसने तोड़ा, बच्चे रोने लगे, कहा अली ने। दिलों में अली की मोहब्बत बैठेगी, अली से नफरत बैठेगी। 60 साल तक अमीरुल मोमिनीन के ऊपर मिंबरों से लानत भेजी गई, ये अमल इतनी आसानी से कैसे अंजाम पा गया, कैसे लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, पहले से जहन तैयार कर दिए गए थे। और इसे सवाब अजीम समझा जाता था, खुतबा जुमा में अमीर उमरीन पर लानत के बगैर खुतबा होता ही नहीं था। एक खतीब अपने खुतबे में अली पे लानत करना भूल गया, बीच में किसी साहब ने याद दिला दिया, मौलाना साहब आपने वो लानत नहीं भेजी, अरे अरे चलो अच्छा हुआ कि हम इस गुनाह से बच गए कि हमने लानत नहीं भेजी, ये अजीम इबादत हमसे नहीं छूटी। शुक्राने के तौर पर उन्होंने मस्जिद तामीर कराई कि उन्होंने हमको याद दिला दिया, इतनी अजीम इबादत हमसे छूट रही थी, कैसे रच बस गया था। यानी हक को बातिल का लिबास पहना दिया गया था, हक को बातिल का लिबास। इसलिए लोग हक की तरफ क्यों नहीं आए, हक की तरफ, हक को क्यों नहीं पहचान, हक को पहचाने क्यों नहीं पहचाना, नहीं पहचाना इसलिए कि हक को बातिल के लिबास में पेश किया गया था। 60 बरस तक एक छोटा सा हादसा सबब बन गया कि अली पर लानत का सिलसिला बंद कर दिया गया। वो क्यों, एक ऐसा मुजाहिद मिल गया जिसने हक पर बातिल की चढ़ी हुई नकाब को हटा करके हक का नूरानी चेहरा दिखा दिया। खिलाफत जब उमर इब्न अब्दुल अजीज के हाथों में आई है, उमर इब्न अब्दुल अजीज बनी उमैया ही का एक खलीफा है, तो उसके साथ एक इत्तेफाक हो गया था। इत्तेफाक ये हो गया था कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का उस्ताद जो बचपन में था टीचर और मुअल्लिम, वो मुहिब्बे अहले बैत था। तकिये वाला शिया, छुपा हुआ शिया, इनका जो है मुअल्लिम है अतालिक है, इन्हें पढ़ाता था। उमर इब्न अब्दुल अजीज एक दिन खेल रहे थे, कमसिन हैं अभी, उनके उस्ताद का वहाँ से ये जो है गुजर हुआ। क्या खेल हो रहा था? लानतबाजी का खेल, यानी बनी उमैया के बच्चे खेलते भी थे तो लानत का खेल खेलते थे, अली पे लानत का खेल। आज भी होता है ना, बहुत सारे गेम्स तैयार आजकल किए जाते हैं, जिस शख्सियत को जो है समाज के अंदर बदनाम करना हो, नफरत फैलाना हो, उस तरह का गेम बनाया जाता है। बनी उमैया ने भी यही किया था। गेम क्या था उनका, बच्चे क्या खेल खेलते थे? लानत का खेल। उनका उस्ताद वहाँ से गुजर रहा था, देखा उमर इब्न अब्दुल अजीज खेल रहे हैं। कौन सा खेल? लानत का खेल। बड़ा गुस्सा उनको आया, जाहिर सी बात है मौला का चाहने वाला जब सुनेगा कि मौला पर लानत भेजी जा रही है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आए मस्जिद में आकर के बैठ गए, जब देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज आए पढ़ने के लिए, उनको देखते हुए खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। दो रकात, चार, वो नहीं चाहते थे इनको आज सबक ने पढ़ाए, गुस्सा था उनको। दो रकात, चार रकात, छः रकात, आठ रकात, ये समझ गए कि आज ये आम वाली नमाज नहीं है, ये जो है तहियत मस्जिद वाली नमाज नहीं है, ये किसी मकसद के तहत नमाज हो रही है। बहरहाल उमर इब्न अब्दुल अजीज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उस्ताद आखिर वजह क्या है, क्या गलती हो गई है कि आप मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने खैर नमाज को ख़त्म किया, गुस्से से कहने लगे तो अभी क्या कर रहे थे? कहा खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? कहा लानतबाजी। किस पे लानत? कहने लगे अली पे लानत, और किस पर? का जानते हो अली कौन है? वो सारी बातिल के जो गलाफ पड़े हुए थे एक एक करके हटाया। उसने कहा अली ये? कहा नहीं झूठ। कहा अली ये नहीं। अब उन्होंने अली के फजाइल बयान करना शुरू किए, अली वो हैं, अली वो हैं, अली वो हैं। अब ये हैरत ज़दा। खैर इसका कहना है कि मैंने ये तय कर लिया कि अगर मुझे हुकूमत मिल गई, खिलाफत मिल गई, तो मैं इस सिलसिले को बंद कराऊंगा। इत्तेफाक से इनको हुकूमत मिल गई, जबकि उस सिलसिले के थे नहीं, नानिहाले रिश्ता था उनका उस ख़ानदान में। इनको बहरहाल हुकूमत इत्तेफाक से मिल गई, खलीफा बना दिए गए उमर इब्न अब्दुल अजीज। उनको अपना वादा याद है, मगर इस वादे पर अमल करना आसान नहीं था। इतना रच बस गया था लोगों के दिलों में ये मसला अली पे लानत भेजने का, अगर आज ये पाबंदी लगा देते, ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि आज से लानत बंद, तख्ता पलट जाएगा, हुकूमत छिन जाएगी, कबाइल के सरदार बगावत कर देंगे, फौज के कमांडर जो है बगावत कर देंगे, शहरों में आवाम भी इसे मानने को तैयार नहीं होंगे, ओलमा, दरबारी ओलमा मस्जिदों में इनके खिलाफ हंगामा कर देंगे, हुकूमत चली जाएगी हाथ से। इन्होंने एक बाकायदा एक प्लान बनाया किस तरीके से इस सिलसिले को काबू में किया जा सकता है। दमिश्क में कैपिटल था, जानते ही आप हैं, वहां पर एक यहूदी डॉक्टर रहा करता था, तबीब डॉक्टर, उसको बुलाया, कहा देखो कल जब मैं दरबार में बैठूं तो तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, पूरा उनको सिखा पढ़ा करके तैयार कर, तुम ये काम करना है, उसके बदले में तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूसरे दिन दरबार जब सजाया तो तमाम कबाइल के सरदार को बुलाया, तमाम फौज के जितने कमांडर थे तमाम कमांडर्स को उन्होंने जो है बुलाया, जितने भी मुअस्सिर बदमाश हो सकते थे सबको बुला लिया, कल जिनसे खतरा हो सकता था इस फैसले के खिलाफ सबको बुला लिया, दरबार छलक रहा है। इतने में यहूदी डॉक्टर आता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तन्हाई में कहूं या सबके सामने? नहीं तो हमारे अपने हैं, जो कुछ कहना है इनके सामने कहो, तन्हाई में क्यों कहोगे, कोई गैर नहीं यहां पर है। उसने कहा ऐसा है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। बिगड़ गया, शर्म नहीं आती? मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, एक मुसलमान लड़की यहूदी से शादी, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी लड़की का रिश्ता मांगा है? उसने कहा हुजूर ये बताइए, आप बड़े हैं या आपके पैगंबर बड़े हैं? आप बड़े हैं या आपके नबी? का नहीं, यकीन है हमारे नबी बड़े हैं। का आपकी बेटी बड़ी है या आपके नबी की बेटी बड़ी है? का यकीनन हमारे नबी की बेटी। का जब आपके नबी ने अपनी बेटी अली जैसे खारजी को ब्याह दी तो आप अगर हमसे शादी करते तो कौन सी बुरी बात है? बस ये कहना था कि दरबार पे सन्नाटा छा गया। आप कहते हैं ना कि अली ऐसे थे, अली वैसे थे, आप अली पे लानत जो भेजते हैं तो अली ये थे, अली ये थे, अली ये थे, अली ये थे। आपके नबी ने तो शादी कर दी, तो आपको क्या परेशानी है। अब सबके सर झुक गए, पूरा प्लान बनाया था उसने, सबके सर झुक गए, सबके सर झुके हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने सर उठाया और कहा, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक हम दूसरों को ताने का मौका देंगे, क्यों लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके हमने अली पे, क्या वक्त नहीं आ गया कि सिलसिले को बंद किया जाए, ताकि इस यहूदी में हिम्मत ना पड़ सके, भरे दरबार में आके हमारी बेटी का रिश्ता मांगे। अब हाँ 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 हाँ, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, हाँ ये काम तो, ये काम तो, जो मुआफिक थे वो भी, जो मखालिफ हुए, हाँ 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 हाँ, उन्होंने फौरन तैयार किया आर्डिनेंस, खुद मुहर लगाया, इन सब बदमाशों से साइन ले लिया, ताकि कल ये ना कहा जाए कि खलीफा ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज का हुक्म है। बगावत, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का हुक्म नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। सबने साइन कर दिया, उसी वक्त उन्होंने पूरे ममलकत में इस ऑर्डिनेंस को फैला दिया कि आज के बाद से जो अली पे लानत भेजेगा उसको हम सजा देंगे। इस तरह यह सिलसिला बंद हुआ। पहचान गए ना हक को, किसने पहचानवाया, उस मुअल्लिम ने पहचानवाया। पूरी तरीके से तो ना पहचान सका, क्योंकि अभी हवाए नफ्स बाकी थी ना, अगर हवाए नफ्स ना होती तो पूरी तरीके से पहचान लेता और हुकूमत जिसका हक था उसके हवाले करने की कोशिश करता। लेकिन बहरहाल जितना पहचाना था उसने कई काम किया है, लानत का सिलसिला बंद कराया, फदक को वापस किया, कई काम उसने अंजाम दिया। क्यों? एक ने पहचानवा दिया। तो हक को नहीं मानते क्यों? इसलिए कि पहचाना नहीं। पहचाना क्यों नहीं? एक सबब हवाए नफ्स, दूसरा सबब हक को बातिल का लिबास पहना करके पेश कर दिया गया है। इमाम हसन अलैहि सलातो वस्सलाम ने जो सुलह की है माविया से, उसके पस मंजर में बहुत सारी, एक चीज ये है कि माविया ये करता था कि इमाम हसन के सिपाहियों का लिबास पहना करके अपने सिपाहियों को मुख्तलिफ गांव में भेजता था। जाते थे लोग, पैसा दो, गल्ला दो, बकरियां दो, भेड़ दो, ऊंट दो। इमाम हसन ने मांगा, अरे हमारे पास हम गरीब लोग हैं, नहीं है। घरों में घुस करके मारते हुए, पीटते हुए, आग लगाते, जो मिला लूट के लेके चले गए। पब्लिक क्या समझ रही है? इमाम हसन ने यह सारा काम करवाया है, ये सारा आज भी ये सारे काम होते हैं। होशियार रहने की जरूरत है। हर चीज जो खबर जो हमने टीवी पे देख ली, हर बात जो हमने अखबार में पढ़ ली, फौरन उसे यकीन मत कर लीजिए, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। आज भी हक को बातिल और बातिल को हक बना करके पेश किया जा रहा है। मैंने अभी अर्ज किया ना, मुजाहिद को टेरोरिस्ट और टेरोरिस्ट को मुजाहिद बना करके पेश किया जा रहा है। आंखें खोलने की जरूरत है। खौब ये तो बातिल ताकतें कर रही है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हक पर अमल करवाएं ना, बातिल को रोकें। और बातिल को हक पर अमल कब होगा? जब हक को लोग पहचाने। हक को ना पहचानने की एक वजह क्या है कि हक पर बातिल की नकाब डाल दी गई है, हक पर बातिल की चादर डाल दी गई है, पसे पर्दा चला गया है। हक सामने जो चीज शो कर रहा है ये हक नहीं है, ये बातिल है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों को हक से आशना कराएं, हम लोगों को बताएं कि जिसको बातिल बना के पेश किया जा रहा है ये बातिल नहीं, ये हक है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हमें ये बताना है। ये आजादारी क्यों कायम की गई थी आपको पता है? इतना सवाब आजादारी पे क्यों दिया गया है? आजादारी का मकसद क्या था? आजादारी का मकसद यह था कि हक पर बातिल का पर्दा न पड़ने पाए। मकसद अजा यह है कि हम लोगों को बताएं कि हुसैन कौन थे, यजीद कौन थे, मकसद हुसैन क्या था, हुसैन ने क्यों कुर्बानी इतनी बड़ी दी है, हक क्या है, बातिल क्या है। मिंबरों से हक बयान हो, नहों में हक बयान हो, मातम में हक बयान हो, जुलूस में हक बयान हो, आजादारी के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो सोजखानी हो, चाहे वो नहा हो, चाहे वो मरसिया हो, चाहे वो सलाम हो, चाहे वो मजलिस हो, चाहे वो मातम हो, जिस हाल में भी हैं, आजादारी का मकसद क्या है? मकसद है हुसैन हमारे मोहताज नहीं है, वो तो बांटने वाले, हम उन्हें क्या देंगे? वो तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम थोड़ा सा रो ले लेंगे तो उनको जो है वो तस्कीन हो जाएगी। नीचे रखी गई थी, काहे के लिए रखी गई थी? ताकि लोगों को हक पता चल सके। حکم فقط رونے کا نہیں ہے, زور سے رونے کا حکم ہے. کائے کے لیے؟ امام رضا کے یہاں مجلس ہو رہی ہے, شبیب بیٹھے ہوئے ہیں, رومال منہ پہ رکھے. بہت سے لوگ ہیں نا, بہت سے لوگ آواز سے روتے ہیں, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا رونے میں شرم آتی ہے تو رومال رکھ لیتے ہیں, آنسو گر رہے ہیں. محبت ہے امام حسین سے, تبھی تو آنسو نکل رہے ہیں نا, آواز نہیں نکلتی ہے. امام نے فرمایا, شبیب میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے, تم رو نہیں رہے ہو؟ شبیب نے رومال ہٹایا, مولا دیکھیے کتنے آنسو. کہا ایسے نہیں, چیخ کے رو, اس طرح سے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا. یہ کاہے کے لیے؟ شور کرنے کے لیے کیوں کہا؟ زور سے بولو, زور سے رو. کیوں رو؟ تو انسان کی نفسیات ہے نا. اگر آپ چار سڑک پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کیوں ہنس رہے ہیں. 10 آدمی گزر جائیں, 20 گزر جائیں, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ رو رہے ہیں تو اس بے وفا دنیا میں بھی, اس بے حس دنیا میں بھی 10 میں سے 2 آدمی تو رکھی جائیں گے, بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رو, جب رو گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو. اب تمہیں انہیں بتاؤ گے ہم کیوں رو رہے ہیں. ہمارے رونے کا سبب یہ ہے, ایک یزید تھا, ایک حسین تھے, حق تھا. بات پوری کہانی کربلا کی لوگوں کو پتا چل جائے گی, دہن بے دہن. لہذا عزاداری کا مقصد جو تھا وہ اعلان حق. جو مقصد امام حسین کربلا میں, وہی مقصد ہماری عزاداری کا یہاں پر ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, کیوں امام سجاد نے اہتمام کیا تھا؟ جب تک زندہ رہے روتے رہے. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا نا, کیا یہ جذباتی آنسو ہیں؟ ایک باپ اپنے, ایک بیٹا اپنے باپ پہ رو رہا ہے, اتنی سی بات ہے بس. کوئی موقع امام نہیں چھوڑتے ہیں, کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں. قصاب کی دکان سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر, سامنے کھانا پانی آتا ہے تو وہاں پر. زہری امام کا ایک چاہنے والا ہے, چاہنے والا یعنی بمانے شیعہ نہیں ہے, ہے تو دربار ہی کا ہے, مگر برائے امام سے عقیدت رکھتا ہے, امام کا شاگرد بھی ہے, پڑھنے بھی امام کے پاس آتا تھا. بنی امیہ کی ایک اہم شخصیت, بڑا عالم, درباری عالم ہے, البتہ درباری عالم ہے. امام نے کئی خط لکھا ہے اس کو, زہری کو, اور لکھا ہے کہ تم جیسے علماء نے ان ظالموں کو سہارا دیا ہے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں. کافی ہے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, وہ خطوط ہیں کتابوں میں محفوظ ہیں. بہرحال زہری امام کا شاگرد بھی ہے, امام سے عقیدت بھی رکھتا ہے. زہری کے بیٹے کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, امام کے پاس آتا ہے, مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں کہ عزت آپ مجھے بخشیں, آپ میرے بیٹے کی شادی میں شامل ہو جائیں. امام نے فرمایا, زہری جب سے کربلا میں میرا بابا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے, میں نے خوشی کی بس میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے, میں نہیں جاتا. اس کا اصرار ہے, نہیں مولا ہم تو چاہتے کہ آپ ہمارے آئیں. امام نے کہا, اچھا دیکھو, ظاہر سی وہ زمانہ ہے جب مجلسوں پر پابندی ہے نا, مجلس تو نہیں ہو سکتی ہے. گھر میں امام سجاد اپنے باپ کا ماتم کر لیتے ہیں, رو لیتے ہیں, دو چار جو گھر والے, باقاعدہ مجلس کا انتظام تو نہیں ہو سکتا ہے. شدید یہ جو ہے گھٹن کا ماحول ہے. امام کہتے ہیں, زہری میں ایک شرط پہ آؤں گا, شرط یہ ہے کہ تم اپنے یہاں شادی میں میرے بابا کی مجلس کا اہتمام کرو. کہا, مولا کوئی بات نہیں ہے, چونکہ وہ درباری ہے تو اس کو تو پرمیشن بھی مل جائے گی, اس کو اجازت بھی مل جائے گی. اس کو اجازت مل گئی ہے, امام تشریف لائے ہیں, ذاکر ممبر پہ گیا ہے, ذکر کربلا بیان کر رہا ہے. کربلا میں پہلی دفعہ علنی طور سے سب کے سامنے مدینے میں جو ہے اس طریقے سے ذکر حسین ہو رہا ہے. کربلا میں کیا ہے, ظاہر سے دشمن کا بھی دل پسیجنے لگا نا, اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے. دربار یزید میں امام سجاد نے خطبہ دیا, تب لوگ روئے تھے کہ نہیں روئے تھے؟ رو رہے ہیں, سب لوگ سر جھکائے رو رہے ہیں. ایک دفعہ جب مجلس ختم ہوئی, لوگوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ امام سجاد موجود نہیں ہے, امام زین العابدین موجود نہیں ہے. دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, دیکھا امام سجاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حسین کے ماتمداروں کو جو مجلس میں آئے ان کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں. لوگ آگے بڑھے, مولا یہ تو آپ کا مقام نہیں تھا, یہاں آپ کہاں آگے بیٹھ گئے؟ کہا, جو چیزیں میری آنکھیں دیکھ رہی تم نہیں دیکھ سکے. ارے میری آنکھوں نے دیکھا کہ میری دادی فاطمہ زہرا آ کر کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, میں اٹھ کے وہاں چلا گیا. اس طرح سے امام سجاد نے دشمن کے گھروں میں حق کو بیان کرنے کے لیے مجلس کا استعمال کیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی حق کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی حق کو سمجھانے کی کوشش کریں. بارِ الٰہی واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارِ الٰہی صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بارِ الٰہی جو صاحب روزگار ہیں انہیں توفیق عنایت فرما کہ اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کریں. بارِ الٰہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بارِ الٰہی شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. براج اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصار رحمت حسین.
دلوں میں رہے بے قراروں کا ماتم، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے. پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی، خطبہ پڑھ کر بتاتی تھی زینب، میں تو دختر ہوں مشکل کشا کی، میرے بھائی کا نیزے پہ سر ہے. ظالموں کی ستائی ہوں لوگوں، سر شہیدوں کے لائی ہوں لوگوں، میرے ماں جائے کا سر وہی ہے، مستقل جس پہ میری نظر ہے. روکے کہتی تھی بالی سکینہ، آ کے کربل میں ڈوبا سفینہ، آنکھوں میں لگنے لگی ہے اور مسند کے جلنے کا ڈر ہے. مجھ کو تھوڑا سا پانی پلا دو، ورنہ بابا کو میرے بلا دو، ظالموں کو رحم کچھ نہیں ہے، پیاس سے میرا جلتا جگر ہے.
Yo, Sane. चबरदासर से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
चबरदासर से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
अली इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा, ये बहन कैद हुई, तू नाया गाजी।
जबरदस्ती से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशीकी जाची दे, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तश ना लबी, तू ना आया गाजी।
से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
जब मैं टूटा सजर तुझसे आबाद था घर, हे बढ़ना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, अनिरंदारे वफा इस बहन को बखुदा, तुझे हर सस्ती बरी, तू नाया गाजी।
जबरदस्ती से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
आ गई शाम अलम लुट गए अहले हरम, रेत भरती हुई हो गया ठंडा आलम, पर सदने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली, तू नाया गाजी।
जबरदस्ती से चीनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसाइल आलमीन।